श्रोताओं, अब हम जिस हेडिंग की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, यह फ्रांसीसी राज्य क्रांति की अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसका नाम है बस्तीय का पतन। तो आइए शुरू करते हैं। बस्तीय का पतन। पेरिस से थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा किला था, जहां प्रायः राजनीतिक बंदी रखे जाते थे। मीराबो और वाल्टियर जैसे लोग वहां भेजे जा चुके थे। धीरे धीरे बस्ती निरंकुशता और स्वच्छंदता का प्रतीक बन गया था। लोगों को मालूम था कि यहाँ बारूद और शस्त्र काफ़ी मात्रा में मौजूद हैं। 13 जुलाई को यह अफवाह फैली कि सैनिकों को पेरिस भेजा जा रहा है। इससे उत्तेजित होकर लोगों ने शस्त्र संग्रह करने का निर्णय लिया। नगरों में जहाँ शस्त्र उपलब्ध हो सकते थे, वहाँ लूट खसोट कर भीड़ ने हथिया लिया। 14 जुलाई को यह खबर फैली कि बस्तिया में शस्त्रों का भंडार है, और यह जानकर भीड़ भी उस ओर उगड़ पड़ी। उस समय बस्तिया में न तो बहुत हथियार थे और न ही राजनीतिक कैदी। उसकी सुरक्षा का पूर्ण प्रबंध नहीं था। फिर भी प्रशासक दलोनों ने हथियार देने से इनकार कर दिया। भीड़ को डराने के लिए जब रक्षकों ने गोली चलाई, तो सैकड़ों लोग हताहत हो गए और भीड़ किले पर टूट पड़ी। भीड़ ने सचमुच ईंट से ईंट बजा दी। रक्षक मार दिए गए। कैदी, जिनमें अपराधी भी थे, छोड़ दिए गए। पूरा किला ध्वस्त कर दिया गया। लोग यादगार के लिए वहां से लोहे और पत्थर के टुकड़े अपने अपने घर ले गए। बस्तीय का नामो निशान मिट गया। इस घटना का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि आज भी फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को ही मनाता है। वैसे अपने में यह कोई बड़ी बात नहीं थी। एक मामूली किले पर उग्र भीड़ ने कब्जा करके उसे नष्ट कर दिया था। यह घटना बदले हुए समय की आगमन की अस्पष्ट पूर्व सूचना थी। लुई ने इस घटना का विवरण जानकर कहा कि अरे, यह तो विद्रोह है। पास खड़े लियांकूर ने कहा, नहीं सरकार, यह क्रांति है। और सत्य ही यह क्रांति का उद्घोष था। बस्तिया का एक किला ही नहीं, एक सिद्धांत और एक परंपरा का पतन था। ब्रिटिश राजदूत ने लिखा है कि फ्रांस अब एक स्वतंत्र देश हो गया है। बस्तिया पर हमला करने वाले में मुख्यतः मेहनत करने वाले लोग थे, और सन 1790 से इन्हें बस्तिया के विजेता कहकर सम्मानित किया गया था। वहाँ थोड़ा अतिरेक भी हुआ था। उसकी सांतोब्रिया ने आलोचना की थी। इस आलोचना के जवाब में थॉमस मेन ने कहा कि यह अतिरेक क्रांतिपूर्ण विकृत हो गए मस्तिष्क की उपज थी। क्रांति उसे ठीक करने के लिए हुई थी। बस्तिया के पतन के तत्कालिक और दुर्गामी परिणाम ही क्रांतिकारी थे। इससे फ्रांस के लोगों को सीधी कार्यवाही करने की प्रेरणा मिली। सारे फ्रांस में क्षुब्ध लोगों ने सामंतों और विरोधियों पर प्रहार करना शुरू कर दिया, और बस्तिया की आग तेजी से संपूर्ण फ्रांस में फैल गई। सामंतों की हवेलियों पर प्रहार किए गए, उन्हें लूटा और जलाया जाने लगा, पुराने दस्तावेज नष्ट कर दिए गए, और इस प्रकार पुरातन व्यवस्था के गढ़ों और प्रतीकों को समाप्त किया जाने लगा। दूसरी ओर फ्रांस में यूरोप का सबसे प्रसिद्ध एक तंत्र था। बस्तिया के पतन को एक तंत्र की पराजय और स्वतंत्रता की जीत समझा गया। पेरिस में जनरल लाफायत के नेतृत्व में सामान्य सुरक्षा के लिए नेशनल गार्ड का गठन किया गया, और सैनिक शक्ति मध्य वर्ग के हाथ में आ गई। पेरिस में एक नई म्यूनिसिपल सरकार का संगठन किया गया, और धीरे धीरे पूंजीपति वर्ग के हाथ में सत्ता सिमटने लगी। सारे यूरोप में बस्तिया के पतन पर खुशियाँ मनाई गई। रूस और जर्मनी के छात्रों ने सड़कों पर नाच गाकर फ्रांसीसियों का अभिनंदन किया। फ्रांस के प्रतिद्वंदी इंग्लैंड के प्रबुद्ध लोगों ने भी इसका स्वागत किया। उस समय के सबसे प्रसिद्ध कवि वर्ड्सवर्थ ने फ्रांस की प्रशंसा में कविताएं लिखी, जिसका भाव था, फ्रांस में इस समय जीवन इतना सुखकर है कि, और इस समय युवा होना तो मानो स्वर्ग का सुख ही भोगना है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बस्तिया का पतन फ्रांस के इतिहास और क्रांति का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। अभी भी लोगों को राजा के प्रति कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं था, परंतु रानी अवश्य बहुत घबराई हुई थी। लुई ने पेरिस जाने का निश्चय किया। जब वहां क्रांति की तिरंगी कलंगी लगाई लगाए पेरिस पहुंचा तो राजा जिंदाबाद के नारे लगाए गए। नेशनल असेंबली में 4 अगस्त को एक अप्रत्याशित घटना हुई। नुआई नामक एक प्रतिनिधि ने यह प्रस्ताव रखा कि करों की में समानता और विशेषाधिकार का अंत होना चाहिए। उसने घोषणा की, मैं अपने विशेषाधिकार का परित्याग करता हूँ। स्थिति अत्यंत नाटकीय थी और लोग भावोवेश में आ गए। सामंत प्रतिनिधियों में होड़ सी लग गई और सुबह होते होते प्रायः सभी प्रतिनिधियों ने अपने विशेषाधिकार का परित्याग कर दिया। यह सिद्धांत बनाया गया कि सभी नागरिकों से समान कर वसूले जाएंगे। इस प्रकार समानता और एकरूपता की स्थापना फ्रांस में हो गई, जिसके लिए वहां की जनता लालायित थी। सुबह की रोशनी एक नया फ्रांस जागृत हुआ। सदियों पुरातनी व्यवस्था का अंत हो चुका था। समाज की कब्र पर पूंजीवादी फूल खिल रहे थे। सामंतों की जमीन पर पहले से ही किसानों ने कब्जा करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे सामंतों की जमीन नगर के धनिकों और मध्यम वर्ग के लोगों के हाथ में आने लगी। उस समय एक कार्टून प्रकाशित हुआ, जिसकी पहली तस्वीर में एक बूढ़ा किसान पीठ पर बोझ लादे हुए था। बोझ पर लिखा था सामंती और धार्मिक कर। दूसरे चित्र में वही किसान पादरी और सामंत की सवारी कर रहा था और बोल रहा था, मैं जानता था मेरे दिन भी आएंगे। संभवतः यह सच नहीं था कि नई चेतना से फ्रांस का किसान शक्तिशाली हो गया है, लेकिन यह जरूर सच था कि पादरी और सामंत ध्वस्त हो गए। तात्कालीन स्थिति ने यह सिद्ध कर दिया कि फ्रांस में एक नई जागृति का उदय हो चुका है। इसी समय मारा ने लिखा कि फ्रांस में जो भी स्थिति इस समय आई है वह सामंतों और पादरियों की उदारता नहीं, अपितु लोगों के द्वारा अपने बल और शस्त्रों के बल पर छीनी गई उनके अधिकारों का प्रयास ही है।